والمطلقات يتربصن بانفسهن، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ ولا یحل لہن یکتمن، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ تخلیق فرمایا ہو اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران انہیں اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ اسلام کا نکاح سے لے کر طلاق تک کا سسٹم اتنا آرگنائزڈ، اتنا سسٹمیٹک ہے اور اتنا لاجیکل ہے کہ آج دنیا بھر کے سارے قوانین آپ دنیا کے لکھ لیجئے کہ شادی کی صورت میں کیا قانون ہے، ڈائیورس کی صورت میں کیا، ایک پلڑے میں ڈال دیں تو آپ اللہ کے اس قانون کو دیکھیں گے تو یہ سب کے اوپر جیت جائے گا۔ اتنے خوبصورت طریقے سے عورت اور مرد کو حقوق اور فرائض سکھائے گئے کہ جب تک مسلمان گھروں میں ان چیزوں کو سامنے رکھا جاتا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی بھی طلاقیں نہیں ہوتی تھی، کبھی بھی وہ غلط حالات نہیں تھے جس کی کیفیت آج دکھتی ہے۔ اگر آج میں اور آپ امت مسلمہ امت وسط بننا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے اپنے گھروں کے نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ جس ملک میں آپ رہیں اینڈ آف دا ایئر خبر پھیل جائے کہ پورے سال میں جتنے ڈائیورس کیسز فائل ہوئے اس میں ایک بھی مسلمز کا نہیں تھا، ایک خاموش تبلیغ ہوگی۔ میں اور آپ اسلام کا نام صرف قرآن پڑھ کر نہیں بیان کریں گے، ہم اپنے رویوں سے دیکھیں گے وہ کہ کیا بات ہے ان کے گھروں میں لڑائیاں نہیں ہوتی، دے آر دا ہیپی کپل، دے آر دا سویٹ برڈز اور دے آر دا فلاں برڈز، یہ کون سے، آؤ ہم ان سے سیکھیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے احکامات کو مانیں گے۔ اللہ نے مرد کو ایک اپر ہینڈ دیا نکاح کی صورت میں، چونکہ اس نے زیادہ خرچ کیا تھا تو طلاق کی صورت میں اپر ہینڈ کہ مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی لیکن مانگ سکتی، اتنا سا فرق ہے، دیٹس اٹ۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے نکاح کے وقت میں ایجاب و قبول مرد کی طرف سے آئی تھی آفر اور عورت نے اس کو قبول کیا تھا، تو لہٰذا اس سسٹم کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ ہمارا ایک لیکچر بھی ہے نکاح سے طلاق تک، سٹیپ بائی سٹیپ بہت خوبصورت طریقے سے ہم نے ایک پریزنٹیشن کے ذریعے دیکھا تھا کہ ایک شادی شدہ جوڑے کو یہ مسائل کتنے ضروری ہیں پتہ ہونے۔ اور آج مجھے تکلیف ہوتی ہے وہ سوالوں کے جواب پڑھ کے جو لوگوں نے اخباروں میں پوچھے ہوتے ہیں، اور اکثر سوالوں کے جواب میں ایک ہی جواب ہوتا ہے، نہیں سوری آپ کی طلاق ہو گئی اور اب یہ گھر نہیں جڑ سکتا، نہیں اب کوئی صورت نہیں سوائے حلالہ کے۔ حالانکہ آئیے دیکھیے اللہ کیسے طلاق دلوا رہے ہیں، الطلاق مرتان، طلاق تو دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ دو بار سے کیا مراد ہے؟ 2 مہینے عورت کو طلاق دینی ہوگی تو مرد کو انتظار کرنا پڑے گا، ایک پیریڈ سے دوسرے پیریڈ کے دوران ایک دفعہ طلاق دے گا، پھر وہ عورت اس کے ساتھ رہے گی، اس کے گھر میں رہے گی، کوئی اس کو متعلقہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر اینی ٹائم مرد اپنی طرف سے رجوع کرنا چاہے اس کو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، عورت ریفیوز نہیں کر سکتی، اس کے ماں باپ انوالو نہیں ہوں گے، وہ دوبارہ ہسبینڈ وائف بن کے رہیں گے۔ فرق بس اتنا ہوگا کہ زندگی میں کبھی دوبارہ غصے میں آ کے اس نے پھر طلاق دی، یہ پہلی بھی زندہ ہو کے 2 ہو جائیں گی، 1 نہیں ہوگی۔ پھر دوسرے مہینے مرد خاموش رہے تو بہتر ہے، نہیں اس کو بولنا، چپ رہے۔ 3rd ماہ جب ختم ہوگا آٹومیٹکلی طلاق ہو جائے گی۔ جب وہ اس کے بعد عورت گھر سے واپس جاتی ہے تو پھر اس کے بعد پھر بھی آپشن موجود ہوتی ہے کہ جب کبھی ان دونوں کو فیل ہو کہ نہیں ہم ٹھیک ہی تھے، ویسے ہی وقتی اثر تھا، وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سخت قسم کی طلاق چاہتے ہیں تو پہلا مہینہ مرد طلاق دے، عورت گھر میں رہے گی، پھر عورت دوسری دفعہ جب پاک ہوگی پھر طلاق دے گا، پھر وہ عورت ساتھ رہے گی، پھر 3rd دفعہ طلاق دے گا، پھر عورت جدا ہوگی۔ اس طرح کریں گے تو پھر وہ شرط ہے جس کو ہمارے ہاں فی زمانہ حلالہ کا نام دیتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ دیکھیں یہ حلال اور حرام کے مسئلے ہیں، چلے ہر مسئلہ ہر ایک کو پیش نہیں آتا لیکن شادی شدہ لوگوں کا تو یہ مسئلہ موجود ہے، اس لیے فرض بنتا ہے سسٹرز پہ اور برادرز پہ کہ جو شادی شدہ زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ان مسائل کو سمجھیں۔ اور میں سوچتی ہوں کہ شادی کرنے سے پہلے یہ سارے مسائل ایک کورس کی صورت میں بچے بچیوں کو سکھانے چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک میدان میں کود رہے ہیں اور آپ کو اس کی پابندیاں نہیں پتا؟ اور یہ بات کیوں اہم ہے؟ کیونکہ حلال اور حرام کا فرق ہے۔ آج ایسے ایسے لوگ ہیں جو حرام طریقوں سے رہ رہے ہیں، طلاقیں ہو چکی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ گھر بچ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، آج بھی گنجائش موجود ہے، لیکن وہ چونکہ قرآن نہیں پڑھ چکے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری طلاق ہو چکی ہے اور اب ہمارے پاس رجوع کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑنا بھی کیسے ہے، ایسے نہیں چھوڑنا کہ باتوں کے تحفے دو، بلکہ ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن، اور رخصت کرتے وقت تمہیں ایسا کرنا جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ देखिए अल्लाह ने ये मैनर भी सिखा दिया कि तलाक खोज, घर टूटे तो फिर उसकी सारी चीजें वापस लेने देने के मामले ना करो कि वो अम्मा ने जो बालियां दी थी वो किधर और बहन ने जो अंगूठी दी थी किधर है। इस्लाम तो ऐसी बातें नहीं सिखाता। हमारे तो निकाह तो छोड़िए, मंगनी टूट जाए तो चीजें वापस आती हैं। हदीस में आता है कि जिसने तोहफा देकर वापस ले लिया उसने कुत्ते की कै को करके चाटने वाली मिसाल ली। तो ये सब चीजें हमें सीखने की हैं। अलबत्ता ये सूरत इससे एग्जेम्प्ट है, यानी मुस्तस्ना है कि जौजैन को यानी शोहर और बीवी को अल्लाह की हदूद पर कायम ना रह सकने का अंदेशा हो। ऐसी सूरत में अगर तुम्हें खौफ हो कि वो दोनों अल्लाह की हदों पर कायम ना रहेंगे तो इन दोनों के दरमियान ये मामला हो जाने में कोई हर्ज नहीं कि औरत अपने शोहर को कुछ मुआवजा देकर अलहदगी हासिल कर ले। ये औरत की तरफ से तलाक जिसको खुला कहते हैं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदूद है, इनसे तजावुज ना करो, और जो लोग अल्लाह की हदों से तजावुज करेंगे वही जालिम है। इसको नोट करें आप। तलाक और निकाह का मामला जो सरासर ह्यूमन मैटर है, हकूकुल इबाद है, बार बार अल्लाह तआला कह रहे हैं तिल का हुदूदुल्लाह, तिल का हुदूदुल्लाह। अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह की फिक्र करो। क्यों? कि इंसानी मामलात में इंसाफ हो ही नहीं सकता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। फिर अगर वो दोबारा तलाक देने के बाद सॉरी फिर अगर दो बार तलाक देने के बाद शोहर ने औरत को तीसरी बार तलाक दे दी फिर वो औरत उसके लिए हलाल ना होगी। अल्लाह ये किसका निकाह किसी दूसरे शख्स से हो और वो इसे तलाक दे दे, तब अगर पहला शौहर और ये औरत ख्याल करे कि हदूद इलाही पर कायम रहेंगे तो इनके लिए एक दूसरे की तरफ रजू कर उसे लिखिए दोबारा निकाह कर लेने में कोई मजायका नहीं। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं जिन्हें वो इन लोगों की हिदायत के लिए वाजे कर रहा है जिसकी हदों को तोड़ने का इंजाम जानते हैं। और जब तुम औरतों को तलाक दे दो और इनकी इद्दत पूरी हो जाने को आ जाए तो या भले तरीके से इन्हें रोक लो या भले तरीके से रुख्सत कर दो, महज सताने की खातिर ना रोके रखना, ये ज्यादती होगी। बस कहते हैं ना रखेंगे ना छोड़ेंगे, ना बेवा होगी ना बीवी होगी। फरमाए मैं ये फल जाली का फकत जलमा नफसा, जो ऐसा करेगा वो दर हकीकत अपने ही ऊपर जुल्म करेगा। अल्लाह तला की आयतों का खेल ना बनाओ। आज खेल बन गया, एक रात के लिए शादी करवाते हैं किसी दूसरी जगह और फिर अगले दिन औरत को तलाक दिलवाते हैं और फिर 3 माह की इद्दत वो गरीब काटती है, फिर पहले मर्द से उसको ब्याह देते हैं। किस पे जुल्म हुआ, मर्द पे कि औरत पे? औरत पे हुआ। जितना तलाक में नुकसान औरत का होता उतना मर्द का नहीं होता। और उसके जज्बात आप देखिए, एक औरत दुल्हन बन रही है और उसको पता है कि मुझे अभी तलाक होनी है, शादी हो रही है और उसको पता है अभी मैंने फिर मुतलका का जोड़ा पहनना है। कितना औरत के जज्बात के साथ ये मजाक है, औरत है कि शोबीस है। अल्लाह ताला ऐसी तमाम लगवियात से हम सबको बचाए। भूल ना जाओ कि अल्लाह ने किस नेमत उज़्मा से तुम्हें सरफराज किया है। मैं नहीं बोलूंगी, मैं आपसे सुनना चाहूंगी यहाँ नेमत उज़्मा से क्या मुराद है। इस्लाम, उम्मत वसत होना। तुम दुनिया में ये घर घर बनाने नहीं आए थे कि एक शादी करो छोड़ो फिर उसको तोड़ो फिर उसको करो, हो गई खत्म करो, बस उसी पे सब्र करो, पहले सोच समझ के करो। हलाल जगह है, अल्लाह ने एक जोड़ मिला दिया, अब तुम्हारी पसंद नापसंद तुम्हारा मिजाज नहीं मिलता। आज मुसलमान लोग सिर्फ और सिर्फ अगर उम्मत वसत का किरदार अदा करने लग जाए यकीन करें घरों में सुकून आ जाए। किसी की बात मैं अक्सर सुनाती हूँ कि एक मुबल्लिग थे तो वो अपने किसी दोस्त से मशवरा कर रहे हैं कि भाई मेरी बेटी परेशान है, उसकी बात नहीं चल रही, सही नहीं बन रही, तो बताओ क्या करूं। पूछा क्या वजह, बेटी और दामाद का क्या मसला है? कुछ बातें पूछते रहे, क्या कैसे है दीन में कैसे का, ठीक है। आखिर में जो कहानी खुली वो ये थी कि मिजाज नहीं मिलते। तो उसने कहा कि मेरे भाई मैं एक बात तुम्हें कहूं, अगर मिजाज की बात है ना तो उनको को खुद निपटे, चुप करके बैठो, तुम अपना काम करो और उन्हें बोलो कि मिजाज ठीक कर लो। दीन की बात होती है, हराम हलाल है वो और बात थी। अगर तुम इस वक्त एक बेटी का बाप बन के जीना चाहते हो तो जाओ फिर उस बेटी का पहले मामला लो, फिर अदालत में ले जाओ, फिर तलाक दिलाओ, फिर उसको घर में लाओ, फिर उसका नया रिश्ता ढूंढो, फिर नई जगह शादी करो। तुम ये करोगे सोचो तुम्हारी तबलीगी और दीनी सरगर्मियां कितनी मुतासिर होंगी, नए सिरे से एक फिर काम होगा। और रह गई बात कि अगर तुम एक उम्मत मुस्लिमा के फर्द की से सोचो तो बेटी को कह दो कि बेटा इसी घर में रहो, तुम अपने आप को बिजी कर लो। और मैं सबको कहूंगी जिसकी अपने शोहर से नहीं बनती या वो भाई जिनकी बीवियां उनकी हम मिजाज नहीं, उसका सबसे आसान और मुजरब नुस्खा इस वक्त है कि खुद को भी बिजी कर ले, उनको भी बिजी कर ले। खाली जहन डेवल की वर्कशॉप होती है। और इसी तरह से फिर बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जब हम एक दूसरे से लगा लेते हैं तो उसका नुकसान क्या होता है कि फिर वो पूरी ना हो पाए तो हम अपने आप को उससे दूर कर देते हैं। वो तुम्हें नसीहत करता है कि जो किताब और हिकमत इसने तुम पर नाजिल की है इसका एहतराम और हुस रखो, अल्लाह से डरो और खूब जान लो कि अल्लाह को हर बात की खबर है। चर्ब जुबानी से हम सच्चे साबित कर सकते हैं खुद को, लेकिन अल्लाह को पता है कौन सच्चा कौन झूठा। जब तुम अपनी औरतों को तलाक दे चुको और वो अपनी इद्दत पूरी कर ले तो फिर इसमें रुकावट ना बनो कि वो अपने जेर तजवीज शौहरों से निकाह कर लें जबकि वो मारूफ तरीके से बाहम निकाह करने पर राजी हों। ये है वो निकाह जिसको तलाक हसना के बाद का निकाह कहते हैं। अभी मैंने जान के ये जुमला बोला, हालांकि तलाक के इश्यूज इतनी जल्दी समझ नहीं आते। मैं आप सबसे भी कहूंगी कि इस बात को बस अपने जहन से निकाल के खाली करें, जिसने डिटेल से पढ़ना होगा वो बाद में सुने। लेकिन ये जुमला मैंने जान के बोला। पिछले सालों के दौरे कुरान में से एक फीडबैक आया था हमारे पास, किसी ने दौरे कुरान किया और उसके बाद उनको ये जुमला याद था सिर्फ कि तलाक हसना ये होती है कि फिर वो मर्द औरत दोबारा शादी कर सकते हैं। इसकी बेस पे वो ढूंढते ढांढते हमारे पास आए, फिर काउंसलिंग हुई, कई साल का घर टूटा हुआ जब देखा तो बिल्कुल यही हालात है, और वो लड़का लड़की और जो भी हस्बैंड वाइफ थे वो दोबारा साथ रहना चाहते थे, उनका निकाह हो गया। तो उन्होंने उस वक्त ये कमेंट दिया था कि ये छोटा सा दौरे कुरान का सफर हमारे टूटे हुए घर को जोड़ने का जरिया बना। तो ये इसलिए मैं थोड़े से जुमले बोल देती हूँ कि हिंट मिल जाए, आप डिसाइड करेंगे कि आपने डिटेल से कुरान पढ़ना है रमजान के बाद, तो फिर तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही कुछ मिल जाएगा। लेकिन यह है कि ये मसाइल आम करने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फरमाए, तुम्हें नसीहत की जाती है कि ऐसी हरकत हरगिज न करना। अगर तुम अल्लाह और रोजे आखरत पर ईमान लाने वाले हो, तुम्हारे लिए शाइस्ता और पाकीजा तरीका यही है कि इससे बाज रहो। अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। जो बाप चाहते हो कि इनकी औलाद पूरी मुद्दत रिजात तक दूध पिए। अब आप देखिए, बाज़ औक़ात तलाक होती है तो बच्चे भी होते हैं। अब यहाँ दूध पीने की बात वैसे तो आम हालात में माओ को उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई गई कि तुम अपने बच्चों को अपना दूध पिलाओ जानवरों का दूध पिलाने की बजाय। लेकिन बाज़ दफा होता क्या है कि जब एक औरत बच्चे को दूध पिला रही होती है उससे पहले तलाक हो चुकी है, तो यहाँ उस जोड़े की बात है कि जिसको डाइवोर्स हुई या ली लेकिन उस सूरत में बच्चा भी मौजूद था, तो वो औरत अपने ही बच्चे को दूध पिलाएगी। लेकिन वो शौहर जब उसका शौहर नहीं रहा लेकिन उसके बच्चे का बाप तो है, तो वो उसके खाने पीने का सारा इंतजाम करेगा। फरमाया, माएं अपने बच्चों को कामिल 2 साल दूध पिलाएं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। जब माँ नेक होती है, जब माँ के दिल में नबी की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत होती है, फिर वो 2 साल तक अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है, अपनी गोद में इस तरह प्यार से रखती है, तो आप देखिए उस बच्चे की आधी तरबियत तो वहीं हो जाती है। आज कहते हैं जरासीम मूव होते हैं, आज कहते हैं कि बैक्टीरिया इधर से उधर चलते हैं। याद रखिए, तकवा और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ भी माओ को बच्चों से इसी तरह से इन्फ्यूज हो जाता है। जरूरत इस बात की है कि माँ इस जिम्मेदारी को समझे। लेकिन जब माँ वीरान है, जब माँ कुरान नहीं पढ़ी भी, जब माँ को अल्लाह से प्यार कम है, अल्लाह के रसूल से बस एक जाहरी किस्म का प्यार है, तो फिर वो 2 साल छोड़ के 10 साल भी पिला देंगी, वो फायदा नहीं होगा। फरमाए, इस सूरत में बच्चे के बाप को मारूफ तरीके से इन्हें कपड़ा खाना देना होगा, मगर किसी पर इसकी वुस्सत से भरकर बोझ ना डालना चाहिए। ना तो माँ को इस वजह से तकलीफ में डाला जाए कि बच्चा इसका है, और ना ही बाप को इस वजह से तंग किया जाए कि बच्चा इसका है। दूध पिलाने वाली का यह हक जैसा बच्चे के बाप पर है, वैसा ही इसके वारिस पर भी है। लेकिन अगर बाहमी रजामंदी और मशवरे से दूध छुड़ाना चाहें तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, और अगर तुम्हारा ख्याल अपनी औलाद को किसी गैर औरत से दूध पिलवाने का हो तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि इसका जो कुछ मुआवजा तय करो वह मारूफ तरीके से अदा करो। अल्लाह से डरो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नजर में। यहाँ क्या पता चला कि अगर मजबूरी के हालात में माँ का दूध बच्चे को नहीं मिल रहा, कोई भी वजह हो सकती है, किसी और औरत का पिला ले। जानवर का दूध एक बिल्कुल लीस्ट चॉइस रह सकती है। अरब लोगों का ये आम कल्चर था। आप खुद जानते हैं कि नबी सल्लम ने अपनी माँ के अलावा 2 और औरतों का भी दूध पिया, और आपके अंदर ये सारी खूबियां क्यों आई कि मुख्तलिफ औरतों की फिर ताकत और उनका ईमान और तकवा आता है। इस कल्चर को भी आम करने की जरूरत है कि अगर आप अपने बच्चे को खुद नहीं दूध पिला सकती, अपने खानदान फैमिली में देखिए, अपने घर में ही हो सकते हैं, बाज़ दफा देवरानी और जठानियों के बच्चे साथ साथ होते हैं, किसी और औरत का दूध पिलाए, क्योंकि इंसान को इंसान का दूध ज्यादा रास आता है। अब यहाँ से इद्दत की बात है, बेवकी की इद्दत। तुम में से जो लोग मर जाए इनके पीछे, अगर इनकी बीवियां जिंदा हों तो वो अपने आप को 4 महीने 10 दिन तक रोके रखें, फिर जब इनकी इद्दत पूरी हो जाए तो फिर उसके बाद क्या करें। फला जुनाहा अलैकुम फीमा फअल नफी अनफुसिहिन। फिर इनको इख्तियार है अपनी जात के मामले में मारूफ तरीके से जो चाहें करें, तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह तुम सब के अमाल से बाखबर है। नबी सल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि अली, 3 बातों में देर ना करना। फर्ज नमाज जब उसका वक्त हो जाए तो उसकी अदायगी में, इसी तरह से जब कोई मर्द या औरत तन्हा रह जाए, यानी बेवा हो गई औरत या मर्द अकेला रह गया या डिवोर्स हो गई, तो उसके निकाह सानी में, और इसी तरह से जब कोई मर जाए तो उसको दफन करने में, वरना फितना होगा। आज हमारे कल्चर में क्या अल्लाह ताला कह रहे हैं कि निकाह कर दो इनके, दोबारा इनको आजादी है, हमारा कल्चर नहीं करने देता। 4 माह 10 दिन की हद है, 4 माह 11वें दिन एक औरत की शादी दोबारा हो सकती है बेबगी के बाद। आज अल्लाह रहम करे कोई ऐसा करे तो कहेगा पहले से सोचा हुआ था और न जाने खुद ही नहीं मरवा दिया। तो ये भी आज उम्मत मुस्लिमा का एक बहुत बड़ा आलमी है कि हम अपने तरीकों से ज्यादा, अपने हमसाया मुल्कों के तरीकों से ज्यादा मुतासिर होते हैं और दूसरों का असर हम पे आ गया। तुम पर इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, अल्लाह तुम सब के अमाल से बाखबर है। जमाने इद्दत में ख्वाह तुम इन बेवा औरतों के साथ मंगनी का इरादा इशारे कनाए में जाहिर कर दो, ख्वाह दिल में छुपाए रखो, दोनों सूरतों में कोई हर्ज नहीं। अल्लाह ताला जानता है कि इनका ख्याल तो तुम्हारे दिल में आएगा ही, मगर देखो खुफिया है तो पैमान ना करना। अगर कोई बात करनी है तो मारूफ तरीके से करो और अकदे निकाह बांधने का फैसला इस वक्त तक ना करो जब तक इद्दत पूरी ना हो जाए। खूब समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों का हाल जानता है। फहज़रूहू, बस तुम उससे डरो। और ये भी जान लो कि अल्लाह बुर्दबार है, छोटी छोटी बातों से दरगुजर फरमाता है। इस्लाम में नस्ब की कितनी अहमियत है यहाँ से पता चलता है। औरत की इद्दत को मुख्तलिफ हालात में जो मुख्तलिफ रखा गया, इसमें बहुत सारी हिकमतों में एक हिकमत यह है कि ये पता चल जाए कि औरत के पेट में पहले शौहर से कोई बच्चा नहीं है। इसको अरबी में इस्तबराए रहम कहते हैं। आप देखिए कि किसी और का बच्चा हो और शादी कहीं और हो जाए तो उस बच्चे का नसब नहीं पता, तो उसको रखिए एक तरफ, और कहाँ वो मुआशरा के जहाँ 50% से ज्यादा बच्चों को अपने बाप का भी नहीं पता। ये भी एक कल्चरली कह लीजिए कि चीज़ है जिसने आज बुनियादें हिला के रख दी आज के माशरों की, कि उधर पैदा होने वाले बच्चों को अपने बापों के नाम तक नहीं पता। आज फॉर्म्स में से अगर बाप का नाम निकालना पड़ा तो उसकी वजह क्या है कि इस माँ को शर्मिंदा ना करो, उसको तो बेचारी को खुद नहीं पता किसकी वजह से हुआ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस्लाम ने कितनी सख्त पाबंदियां लगाई हैं। इस्लाम जो जिना को पसंद नहीं करता उसकी भी यही वजह है कि किसी का बच्चा किसी दूसरे के नाम पर ना लग जाए।